एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे फ्रांसीसी दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने समय, चेतना और जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही, कह सकते हैं, बदल दिया। हेनरी बर्गसन।
जी हाँ, बर्गसन।
उनका दौर था 1859 से 1941 और उनके विचारों में आज भी गजब की ताजगी है।
बिल्कुल, बर्गसन की खासियत ये है कि उन्होंने उस दौर की सोच को सीधी चुनौती दी। मतलब जब विज्ञान और तर्क का बोलबाला था,
हाँ,
और हर चीज को एक मशीन की तरह समझा जा रहा था, उन्होंने कहा, रुको, जीवन सिर्फ पुर्जों का जोड़ नहीं है।
उसमें एक प्रवाह है।
हाँ, उसमें एक प्रवाह है, एक रचनात्मकता है।
तो आज का हमारा मिशन है बर्गसन के इन्हीं विचारों की गहराई में उतरना, ये समझना कि कैसे उन्होंने हमें यंत्रवत सोच से परे जीवन के अनुभव, उसकी लय और रचनात्मकता को महसूस करने का रास्ता दिखाया।
और ये जानना भी दिलचस्प है, जैसा आपने कहा कि दर्शन में इतना गहरा काम करने वाले विचारक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला।
हाँ, कमाल की बात है।
हाँ, ये उनके विचारों की जो व्यापक अपील थी और शायद उनकी भाषा की सुंदरता, उसको दिखाता है। देखिए, बेक्सन जिस समय लिख रहे थे, मतलब 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत,
जी,
वो यूरोप में वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद, जिसे पॉजिटिविज्म कहते हैं, उसका जमाना था।
अच्छा।
ऐसा माना जाता था कि भाई, जिसे मापा जा सके, जिसका विश्लेषण किया जा सके, वही सत्य है। डार्विन के विकासवाद की भी अक्सर यही व्याख्या होती थी कि ये एक तयशुदा मशीन जैसी प्रक्रिया है।
यानी दुनिया एक तरह की बड़ी सी घड़ी थी जिसके सारे पुर्जे पहले से तय नियमों पर चल रहे थे।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
तो फिर इसमें इंसान की इच्छा, उसकी रचनात्मकता, उसकी कोई जगह ही नहीं थी।
कमोबेश यही माहौल था। भौतिकवाद और नियतिवाद, मतलब डिटर्मिनिज्म, वो हावी थे। इसी माहौल के खिलाफ बर्गसन ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हमारी जो तर्क बुद्धि है, इंटेलेक्ट, वो चीजों को समझने के लिए उन्हें टुकड़ों में तोड़ती है, स्थिर मान लेती है, लेकिन जीवन और चेतना का असली स्वरूप तो गतिशील है, एक सतत प्रवाह है।
अच्छा।
और इसे समझने के लिए हमें सिर्फ तर्क नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, और अपने जीवंत अनुभव, लिव्ड एक्सपीरियंस, उस पर भी ध्यान देना होगा।
दिलचस्प मोड़ है। मैंने सुना है वो खूब शुरू में गणित और विज्ञान में काफी तेज थे।
हाँ, बिल्कुल।
तो ये बदलाव कैसे हुआ दर्शन की तरफ?
हाँ, पेरिस में 1859 में जन्मे बर्गसन अकेडमिक रूप से बहुत ही प्रतिभाशाली थे, गणित और मानविकी दोनों में ही। प्रतिष्ठित येकॉल नॉर्माले सुपरियर्स से पढ़े।
अच्छा।
और शुरुआती रुझान गणित और विज्ञान की तरफ ही था, लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद का अध्ययन किया, तो उन्हें उसकी यंत्रवत व्याख्या बहुत अधूली लगी। उन्हें लगा कि ये जीवन की रचनात्मकता, उसकी जो अप्रत्याशितता है, उसको नहीं पकड़ पा रही। इसी असंतोष ने उन्हें दर्शन की गहराइयों में जाने और अपने सबसे मौलिक विचार, ड्यूरे यानी अवधि, को विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
तो ये ड्यूरे या अवधि,
हाँ
यही उनके दर्शन का केंद्र बिंदु बना?
जी हाँ,
ये घड़ी वाले समय से कैसे अलग है और क्यों ये उस यंत्रवत सोच को चुनौती देता है?
यही उनका सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार था।
जी,
देखिए, घड़ी का समय बाहरी है, क्वांटिटेटिव है ना?
रही रही।
उसे हम सेकेंड, मिनट, घंटों में बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
ये काम करने, चीजें व्यवस्थित करने के लिए ठीक है,
जी।
लेकिन बर्गसन ने कहा कि हमारा आंतरिक, जो अनुभव किया गया समय है, वो ऐसा नहीं है। वो ड्यूरे रियल है, वास्तविक अवधि।
वास्तविक अवधि।
हाँ, ये एक अविभाज्य गुणात्मक प्रवाह है, जैसे कोई धुन चल रही हो। इसमें अतीत मरता नहीं, बल्कि वर्तमान में समाया रहता है और भविष्य को आकार देता है। ये सतत बदलता रहता है, इसमें नवीनता है।
अच्छा, यानी ये वो समय है जिसे हम जीते हैं, महसूस करते हैं, वो नहीं जिसे हम नापते हैं।
बिल्कुल, और यहीं पर स्वतंत्रता का विचार आता है। अपनी पहली बड़ी किताब टाइम एंड फ्री विल, 1899 में उन्होंने यही तर्क दिया
हाँ,
कि अगर हम सिर्फ घड़ी वाले बाहरी समय को देखें, तो सब कुछ नियत लगेगा, डिटर्मिंट लगेगा, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक ड्यूरे को महसूस करें, उस प्रवाह को समझें, तो वहीं हमें अपनी सच्ची स्वतंत्रता और रचनात्मकता का एहसास होता है।
क्योंकि ये ड्यूरे पहले से तय नहीं है।
हाँ, ये लगातार बन रहा है।
ये तो समय की पूरी धारणा को ही पलट देता है। अच्छा, अगर समय एक प्रवाह है जिसमें अतीत मौजूद है, तो फिर हमारी यादें कहाँ हैं? क्या वो दिमाग में किसी फाइल की तरह रखी हैं?
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल बर्केसन ने अपनी दूसरी महत्वपूर्ण किताब मैटर एंड मेमरी 1896 में उठाया।
जी,
उस समय यही माना जाता था कि यादें दिमाग में भौतिक रूप से स्टोर होती हैं। बर्केसन ने इसे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि स्मृति या यादें दिमाग में संग्रहित नहीं होती।
अच्छा,
तो फिर कहाँ?
बल्कि शुद्ध स्मृति ड्यूरे के प्रवाह का ही हिस्सा है, एक तरह का कह लीजिए गैर भौतिक आयाम। हमारा मस्तिष्क एक फिल्टर या वाल्व की तरह काम करता है।
फिल्टर?
हाँ, जो वर्तमान कर्म के लिए जरूरी यादों को उस प्रवाह से चुनकर चेतना में लाता है।
अरे, ये तो बहुत ही मौलिक बात है। मतलब दिमाग यादों का गोदाम नहीं, बल्कि एक तरह का रिसीवर या चैन करता है।
हाँ, कह सकते हैं।
ये विचार उस समय तो क्या आज भी कई लोगों को चौंका सकता है।
हाँ, ये मन शरीर संबंध और चेतना की प्रकृति पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण था। और अगर हमारा मानक तरीका यानी हमारी बुद्धि
इंटेलेक्ट
हाँ
इस ड्यूरे के प्रवाह को पकड़ने में उतनी सक्षम नहीं है, तो फिर इसे समझा कैसे जाए?
यहीं पर शायद वो अंतर्ज्ञान की भूमिका आती है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था,
कि बुद्धि व्यावहारिक जीवन, कर्म और विश्लेषण के लिए विकसित हुई है। वो चीजों को स्थिर इकाइयों में बांटकर समझती है। ये जरूरी भी है, लेकिन जीवन के प्रवाह ड्यूरे की लय को पकड़ने के लिए ये नाकाफी है। इसके लिए बर्केसन ने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को एक दार्शनिक पद्धति के रूप में प्रस्तावित किया।
तो ये कोई रहस्यमय छठी इंद्री जैसी चीज है?
नहीं नहीं, रहस्यमय नहीं, बल्कि एक तरह की बौद्धिक सहानुभूति कह सकते हैं, जिससे हम सीधे वास्तविकता के गतिशील प्रवाह के भीतर जा सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं।
क्या इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण हो सकता है? मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्ज्ञान को कैसे समझें बर्केसन के नजरिए से?
सोचिए किसी कलाकार के बारे में जो कुछ नया रच रहा है, या किसी वैज्ञानिक के बारे में जिसे अचानक कोई समाधान सूझता है।
हाँ,
वो अक्सर सिर्फ तार्किक विश्लेषण से नहीं आता, उसमें एक सहज पकड़ होती है, एक पूरी स्थिति को एक साथ समझने की क्षमता शामिल होती है। बर्केसन के लिए ये अंतर्ज्ञान का काम है, जो चीजों को हिस्सों में नहीं बल्कि उनके जीवंत संबंध में देखता है।
तो ये बुद्धि का विरोधी नहीं है?
बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरक है, जो हमें वास्तविकता की गहरी समझ देता है।
तो ड्यूरे हो गया समय का आंतरिक प्रवाह, और अंतर्ज्ञान को गया उसे समझने का एक तरीका। लेकिन जीवन में ये जो निरंतर नवीनता और रचनात्मकता दिखती है, उसका स्रोत क्या है? यहीं पर उनका तीसरा बड़ा विचार आता है, एलान विटाल।
हाँ, क्रिएटिव एवोल्यूशन 1907 में उन्होंने एलान विटाल यानी जीवन आवेग की अवधारणा पेश की। ये उनके दर्शन का शायद सबसे चर्चित और विवादास्पद हिस्सा है।
हाँ,
अच्छा,
उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ संयोग और आवश्यकता का यंत्रवत खेल नहीं है, जैसा डार्विनवाद की तत्कालीन व्याख्या बताती थी, बल्कि जीवन के भीतर एक आंतरिक रचनात्मक शक्ति है, एक जीवन आवेग है,
जो उसे लगातार नए अप्रत्याशित रूप लेने के लिए प्रेरित करता है। यही अलान विटाल प्रकृति में देखने वाली अद्भुत विविधता और नवीनता का स्रोत है।
लेकिन ये विचार थोड़ा अस्पष्ट या अवैज्ञानिक नहीं लगता? जीवन आवेग को मापा कैसे जाए, ये आलोचना तो हुई होगी इसकी।
बिल्कुल हुई, और जोरदार हुई। समकालीन वैज्ञानिकों और बर्ट्रेंड रसल जैसे दार्शनिकों ने अलान विटाल को अवैज्ञानिक, अस्पष्ट और पुराने जीवनवाद वाइटलिज्म की वापसी कहकर खारिज कर दिया।
अच्छा,
इसे एक काव्यात्मक विचार माना गया, न कि कोई वैज्ञानिक व्याख्या। बर्केसन का कहना था कि भाई, विज्ञान बाहरी मापने योग्य चीजों पर ध्यान देता है, जबकि जीवन का यह आंतरिक आवेग अनुभव का विषय है, लेकिन आलोचकों के लिए पर्याप्त नहीं था।
और जीवन के इस आवेग की बात उन्होंने अपनी आखिरी बड़ी किताब द टू सोर्सेज ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन 1932 में भी किया। कुछ ऐसा था?
हाँ, बिल्कुल।
हाँ,
वहां उन्होंने दो तरह की नैतिकता और समाज की बात की। एक है बंद नैतिकता, जो सामाजिक नियमों, आदतों और समूह के दबाव से आती है, ये स्थिर होती है।
ठीक है।
दूसरी है खुली नैतिकता, जो गतिशील, सार्वभौमिक होती है और महान संतों, पैगंबरों या नैतिक नेताओं के अंतर्ज्ञान से प्रेरित होती है। ये वो लोग हैं जो सीधे जीवन के इसी रचनात्मक आवेग एलान विटाल से जुड़ते हैं।
अच्छा, जब हम बर्केसन की तुलना दूसरे बड़े विचारकों से करते हैं जैसे इमानुअल कांट, तो समय को लेकर उनका फर्क साफ दिखता है ना?
हाँ, बहुत स्पष्ट। कांट मानते थे कि समय और स्थान हमारे मन के बनाए ढांचे हैं, जिनके जरिए हम दुनिया को समझते हैं, वो स्थिर है। बर्गसन ने कहा, नहीं, कम से कम समय यानी ड्यूरे तो मन का ढांचा मात्र नहीं बल्कि वास्तविकता का ही एक मौलिक गतिशील पहलू है जिसे हम अनुभव करते हैं।
और फिर वो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी मशहूर बहस, वो तो बहुत चर्चित रही।
हाँ, समय पर दो दिग्गजों का टकराव।
क्या हुआ था उसमें?
ये 1922 की बात है। बर्गसन ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में समय की अवधारणा पर दार्शनिक दृष्टिकोण से सवाल उठाए। उनका कहना था कि आइंस्टीन जिस समय की बात कर रहे हैं वो भौतिकी का गणितीय प्रतिवर्ती समय है जिसे मापा जा सकता है। ये उस मनोवैज्ञानिक अपरिवर्तनीय गुणात्मक ड्यूर से अलग है जिसे हम जीते हैं। बहस बौद्धिक रूप से तो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में आइंस्टीन का पलड़ा भारी रहा।
ऐसा क्यों?
ऐसा माना गया कि बर्गसन शायद भौतिकी के समय और अनुभव के समय को मिला रहे थे। इस बहस ने, कह सकते हैं, वैज्ञानिक हलकों में उनकी प्रतिष्ठा को थोड़ा कमजोर किया।
तो उनकी विरासत क्या रही फिर? क्या आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं, खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, डेटा और तकनीक पर इतनी निर्भर है?
देखिए, उनका प्रभाव दिलचस्प रूप से उतार चढ़ाव भरा रहा है। अपने जीवन काल में तो वे दुनिया भर में मशहूर थे। उनके लेक्चर सुनने के लिए पेरिस में ट्रैफिक जैम लग जाता था। ये सुना है आपने?
हाँ, ये तो कमाल है।
बिल्कुल। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्ववाद और संरचनावाद जैसी नई धाराएं आईं और बर्गसन का प्रभाव कुछ कम हुआ। पर 20वीं सदी के अंत में खासकर फ्रांसीसी दार्शनिक गाइल्स डेल्यूस के काम के जरिए उनका एक तरह से पुनरुत्थान हुआ।
और आज के संदर्भ में क्या डिजिटल युग में बर्गसन की कोई जगह है?
मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा। आज जब हम हर चीज को डेटा में बदलने, हर अनुभव को मापने और हर पल को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश में लगे हैं, बर्गसन हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का एक गहरा गुणात्मक पहलू भी है, हमारी अपनी आंतरिक ड्यूरे, हमारा जीवंत अनुभव। उनके विचार आज संज्ञानात्मक विज्ञान, मेमोरी, परसेप्शन पर, जीव विज्ञान और मीडिया स्टडीज तक में प्रासंगिक माने जा रहे हैं।
अच्छा।
उनका मात्रात्मकता पर सवाल उठाना और अनुभव के अनूठेपन पर जोर देना आज बहुत मायने रखता है।
और साहित्य पर भी तो उनका गहरा असर पड़ा। प्रूस्ट का नाम आता है अक्सर।
हाँ हाँ, मार्सेल प्रूस्ट, जो उनके रिश्तेदार भी थे, और वर्जीनिया वूफ जैसे लेखकों ने चेतना के प्रवाह को लिखने में बर्गसन से प्रेरणा ली। आप उनके उपन्यासों में समय और स्मृति की वैसी ही तरल व्यक्तिपरक अनुभूति पाते हैं जैसी बर्गसन ने वर्णित की थी।
उनके कुछ कथन भी बहुत गहरे हैं, जैसे अस्तित्व में होना बदलना है, बदलना परिपक्व होना है, परिपक्व होना स्वयं को अंतहीन रूप से बनाते रहना है।
हाँ, ये उनके बनने, बिकमिंग के दर्शन का सार है। जीवन कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि एक सतत रचनात्मक प्रक्रिया है। हम हर पल बदल रहे हैं, बन रहे हैं।
और एक और है, बुद्धि की विशेषता जीवन को समझने में एक प्राकृतिक अक्षमता है। ये थोड़ा चौंकाता है ना?
हाँ, पर यहाँ वो बुद्धि को नकार नहीं रहे।
अच्छा।
वो ये कह रहे हैं कि बुद्धि विश्लेषण के लिए बनी है, चीजों को स्थिर करके समझने के लिए, जबकि जीवन एक प्रवाह है।
अच्छा।
इसलिए अकेले बुद्धि जीवन की समग्रता को, उसकी लय को नहीं पकड़ सकती।
हाँ।
उसके लिए अंतर्ज्ञान की जरूरत है जो प्रवाह के साथ बह सके।
समझ गया। अंत में उनके जीवन से जुड़े कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं। ये ट्रैफिक जाम वाली बात तो वाकई कमाल है।
हाँ, उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी। ये भी दिलचस्प है कि उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला पर वो खुद को हमेशा दार्शनिक ही मानते रहे। उनका हंसी पर भी एक सिद्धांत था।
हाँ, क्या था वो?
कि हमें हंसी तब आती है जब हम किसी जीवित चीज में यांत्रिकता या जड़ता देखते हैं, जैसे कोई इंसान मशीन की तरह व्यवहार करे।
अच्छा, उनके अंतिम वर्ष काफी दुखद रहे हैं, सुनने में आया है, खासकर नाजी कब्जे के दौरान।
हाँ, बहुत दुखद। विची शासन ने उनकी यहूदी पृष्ठभूमि के कारण उनकी नागरिकता और सम्मान छीन लिए। जब उन्हें उनकी प्रसिद्धि के कारण छूट की पेशकश की गई तो उन्होंने उन हजारों यहूदियों के साथ खड़े होने का फैसला किया जिन्हें सताया जा रहा था। उन्होंने वो छूट लेने से इनकार कर दिया।
ओहो।
वो कैथोलिक धर्म की ओर आकर्षित थे पर उन्होंने औपचारिक धर्मांतरण इसलिए नहीं किया ताकि वो अपने सताए जा रहे समुदाय के साथ रह सकें। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 1941 में निमोनिया से हुई, जो उन्हें कड़ाके की ठंड में यहूदी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए लगी एक लंबी कतार में खड़े होने से हुआ था।
ये तो बहुत त्रासद है।
हाँ।
उनके जीवन और सिद्धांतों का एक तरह से मार्मिक अंत।
जी,
इस पूरी बातचीत के बाद मन में यह सवाल उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी डेटा केंद्रित दुनिया में बर्गसन हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं।
मुझे लगता है कि वो हमें एक जरूरी ठहराव देते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम अपनी घड़ी की टिक टिक और स्क्रीन की चमक से परे अपनी आंतरिक अवधि, अपने अनुभवों, यादों और भावनाओं के उस अनूठे गुणात्मक प्रवाह को महसूस करने के लिए समय निकाल रहे हैं? क्या हम सिर्फ विश्लेषण और तर्क पर ही निर्भर हैं, या अपनी सहज समझ, अपने अंतर ट्यूशन को भी जगह दे रहे हैं?
शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश है आज के लिए कि जीवन को सिर्फ मापा नहीं जा सकता, उसे जीना होता है, महसूस करना होता है,
हाँ,
उसके प्रवाह में शामिल होना होता है।
बिल्कुल, बर्गसन हमें यंत्रवत होने से बचाते हैं, हमें हमारी रचनात्मकता, हमारी स्वतंत्रता और हमारे अनुभव की गहराई की याद दिलाते हैं, और ये एक ऐसा सबक है जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
हेनरी बर्गसन के विचारों की इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये बातचीत आप सबके लिए भी सोचने के लिए कुछ नया दे गई होगी।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।